हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 18 एंड 19। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिनी, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णातदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजीशतनाय, तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काशिदुपासना व्रजवधू वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न पर वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा पीताम्भरो धरुणबिम्बफल धरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् हरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्व अहम् न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्येस्तवे, वेदेसाङ्गपत् क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा। ततो जाया मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 18। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। धर्म अर्थात बेल महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, न वयम् क्लेश भीजानि यतः स्यु पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहिताः। न वयम् क्लेश भीजानि यतः स्यु पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहिताः। न वयम् क्लेश बीजानि यतः स्यु पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहिताः। शब्दार्थ, न मतलब नहीं, वयम यानी हम, क्लेश बीजानि यानी कष्टों के मूल कारण को, यत जहां से स्यु ऐसा होता है, पुरुषर्षभ मना सब पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ, ऋषभ कहते हैं सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, पुरुषम पुरुषों को तम उस विजानीम जानो वाक्य भेद यानी मत भेद से विमोहिता विमोहित यानी मोहग्रस्त हो गए हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद, हे पुरुषश्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के विभिन्न मतों से मोहग्रस्त हो गए हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति समझाएंगे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, संसार में ऐसे अनेक सैद्धांतिक दार्शनिक हैं जो कार्य कारण संबंधी विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों पर उनके प्रभावों के विषय में अपना अपना मत रखते हैं। सामान्यतः 6 महान दार्शनिक हैं। वैशेषिक दार्शनिक के लेखक कारांध, तर्कशास्त्र के लेखक गौतम, योग शास्त्र के लेखक पतंजलि, सांख्य शास्त्र के लेखक कपिल, कर्म मीमांसा के लेखक जैमिनी तथा वैदांतिक दर्शन के लेखक व्यासदेव, यानी ये सारे जो अलग अलग सिद्धांत देने वाले दार्शनिक हैं, उन सब ने एक अलग अलग मत दिया है, एक अलग अलग कारण बताया है जीवों के कष्टों का। तो वे आगे कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी, यद्यपि धर्म रूप बेल तथा पृथ्वी रूप गाय, बलिबंधि जानते थे कि साक्षात कली ही उनके कष्टों का कारण है, फिर भी भगवत भक्तों के रूप में वे यह भी जानते थे कि भगवान की आज्ञा बिना कोई किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान क्लेश पाप रूपी बेल में फल लगने के कारण है, किंतु भक्ति करने से ये पाप के अंकुर भी क्रमशः लुप्त हो जाते हैं। इस तरह उत्पात मचाने वालों को देखते हुए भी भक्त उन्हें कष्ट पहुंचाने का दोष नहीं ठहराते। वे मान लेते हैं कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा नहीं कर रहा है, अतएव वे कष्टों को ईश्वर द्वारा थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी मात्रा में भेजे गए समझकर सहन करते हैं, अन्यथा उनके क्लेश और भी बड़े होते। महाराज परीक्षित चाहते थे कि प्रत्यक्ष उत्पीड़क के विरुद्ध आरोप प्राप्त हो, लेकिन उन्होंने उपर्युक्त आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर भी ज्ञानी उन भगवान जिन भगवान की स्वीकृति को नहीं मानते, वे अपने ढंग से क्लेशों का कारण ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार ऐसे विचारक स्वयं मोहग्रस्त रहते हैं, अतएव वे यह नहीं जान पाते कि समस्त कारणों के कारण भगवान है। अब श्लोक नंबर 19 भी पढ़ लेते हैं, उसके साथ फिर हम इन दोनों श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक नंबर 19 मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। कीचित् विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परिकर्म स्वभावम् अपरि प्रभुम्। कीचित् विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परिकर्म स्वभावम् अपरि प्रभुम्। कीचित् विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परिकर्म स्वभावम् अपरि प्रभुम्। शब्दात् केचित् विकल्पना, केचित् मन उनमें से कोई, विकल्प वसना सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले, यानी कि वो क्या सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है सिवाय आत्मा के, मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा, वो भी आत्मा ही है, तो वो क्या सोचते हैं, आहु वो ऐसा घोषित करते हैं, आत्मानम यानी अपने आप को, आत्मना अपना यानी अपने आप को ही अपने कष्टों का कारण मानते हैं, और दैवम यानी अति मानव यानी देवी अन्य, दूसरे लोग क्या सोचते हैं कि जो देवता है या जो देवी शक्ति है उसके कारण हमें कष्ट मिल रहा है, और अपरे और कोई दूसरे कर्म यानी वो क्या सोचते हैं जो हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार हमको अपराध मिला है। स्वभावम यानी प्रकृति, कुछ लोग ऐसे स्वभावम अपरे, अन्य कोई ऐसे सोचते हैं कि हम ये जो प्रकृति है ना भौतिक प्रकृति उसी के द्वारा ही हमको कष्ट मिल रहा है। प्रभुम स्वामी अनुवाद, सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपने सुख तथा दुख के लिए उत्तरदायी हैं। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है, और जो निपट भौतिकतावादी हैं वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका परम कारण है। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे, हम सब ध्यान से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में को श्रवण करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जैमिनी तथा उनके अनुयायियों के समान दार्शनिकों की स्थापना है कि सकाम कर्म ही सारे सुख तथा दुख का मूल कारण है। अब जो हम कारण जो भी हमें दुख मिल रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। और यदि कोई श्रेष्ठ अधिकारी कोई अति मानवीय शक्तिशाली भगवान या देवता हैं, तो वे भी सकाम कर्म के अधीन हैं, क्योंकि वे लोगों को कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। भले भगवान के द्वारा मिल रहा है, भले देवताओं के द्वारा मिल रहा है, लेकिन वो हर किसी को क्यों नहीं वो वाला दुख देते। किसी किसी को दुख मिल रहा है, किसी किसी को सुख मिल रहा है, अर्थात वो उनके कर्मों के अनुसार मिल रहा है। तो उनका कहना यह है कि कर्म स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कर्म किसी कर्ता के द्वारा संपन्न होते हैं, है ना। कर्म जिसने कर्म किए उसी को दुख मिलेगा, तो कर्ता को ही दुख मिलता है। अतएव कर्ता ही अपने सुख या दुख का कारण बनता है। यानी जिसको दुख मिल रहा है, जिसको सुख मिल रहा है, आज हम जो सुख और दुख भोग रहे हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हमें हमारे घर तक पहुंचा दिए जाते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद भगवद गीता में 6.5 में भी पुष्टि की गई है कि भौतिक राग से मुक्त मन के द्वारा मनुष्य संसार के कष्टों से अपना उद्धार कर सकता है। अतएव किसी को मन के भौतिक राग के कारण अपने आप को बंधन में नहीं डालना चाहिए। इस तरह मनुष्य का मन ही उसके सुख तथा दुख में मित्र या शत्रु बनता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, नास्तिक जो भौतिकतावादी या सांख्यवादी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रकृति समस्त कारणों का कारण है, उनके अनुसार भौतिक तत्वों के संयोग ही भौतिक सुख दुख के कारण है, और पदार्थ का विघटन ही समस्त भौतिक तापों से मुक्त होने का कारण होता है। गौतम तथा कर्णाद परमाणुओं के संयोग को ही प्रत्येक वस्तु का कारण मानते हैं, और अष्टावक्र जैसे निर्विशेष वाली यह पाते हैं कि ब्रह्म का तेज ही समस्त कारणों का कारण है। किंतु भगवद गीता में स्वयं भगवान घोषित करते हैं कि वे ही निराकार ब्रह्म का स्रोत है, अतएव भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता में भी इसी की पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मोकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारणं। जब महाराज परीक्षित ने देखा था कि बेल रूपी धर्म और पृथ्वी रूपी जो गौ है वो दोनों बहुत ज्यादा कष्ट में हैं, तब उनको दुखी देखकर उन्होंने प्रश्न किया श्लोक नंबर 12 में, को वृषत्व पादास्तीन सौरभीयम सौरभीय चतुष्पदम मां भुवन स्वादृशा राष्ट्रीय राज्ञाम कृष्णानुवर्तनम। को वृषत, किसने काटे तव पादांस्तीन, आपकी तीन पग किसने काटे, सौरभेय चतुष्पदम, आप तो चार पांव आपके होते हैं, अभी आप एक पांव पर खड़े लड़खड़ा रहे हो, मुझे ये बताओ आपके साथ इतना बड़ा अत्याचार किसने किया है। मां भुवंस्ता दृशा राष्ट्रीय, मेरे इतने बड़े राज्य में आज तक किसी को इतना कष्ट नहीं मिला, कोई इतना ज्यादा दुखी आज तक नहीं हुआ। राग्याम कृष्णाणु वर्तिनम, ये मेरा राज्य तो भगवान श्री कृष्ण के आदेशों के अनुसार मैं पालन कर रहा हूँ, और कृष्ण जो कि गौओं से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, और मेरे राज्य में आपके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, मुझे खाली उसका नाम बताओ। आख्या ही विष भद्रम, आप मुझे उसका नाम बताओ, आख्या ही मुझे बताओ, मुझसे कहो भद्रम, मैं आपका कल्याण होगा। साधु नाम कृतागसम, यानी ये जो अपराधी है जो तुम जैसे ईमानदारों का साधुओं का जो कष्ट पहुंचाते हैं, मैं उनको अवश्य दंड दूंगा। आत्मवैरूप प्राप्य कर्तारम पार्थानम कीर्ति दूषण, आपका यह अंग भंग कर दिया है, आपका ये हाल कर दिया है जिसने, मुझे खाली उसका नाम बताओ, क्योंकि आप मेरी प्रजा हो और मेरी प्रजा को कष्ट पहुंचा रहा है। पार्थानम कीर्ति दूषणम, और वो प्रथा के पुत्रों की कीर्ति को कलंकित कर रहा है। आप मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसको, चाहे वो स्वर्ग का देवता ही क्यों न होगा, अगर वो आपके कष्ट का कारण होगा तो मैं उसको अवश्य दंड दूंगा। वो मेरे दंड से नहीं बच सकता है, मैं अवश्य उसकी मेरे द्वारा वो जरूर उखाड़ा फेंका जाएगा, क्योंकि राज्यो ही परमो धर्म स्वधर्म स्वधर्म स्थानुपालनम। ये मेरा राजा का प्रथम कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा में जो भी है उनको संरक्षण प्रदान करूं, और जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है मैं उनको दंड दूं। तब धर्म ने कल क्या कहा था, एतद् वह पांडवेयानाम युक्त मातार भयम वच, जो आपने बोले हैं, मैं जानता हूँ कि आपके योग्य ही शब्द बोले हैं, आपने कोई अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं बोले हैं, क्योंकि ये शाम गुणा गण है कृष्ण दौत्यादव भगवान कृत। आप पांडवों में और आप मतलब आपके वंशजों में सदैव से ऐसे गुण रहे हैं कि वो धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इससे तो भगवान भी आपके हमेशा पक्ष लेते हैं, कभी आपका दूत बन जाते हैं तो कभी आपका सारथी बन जाते हैं, तो क्योंकि आप में इतनी योग्यताएं हैं, इसीलिए आपने जो बोला है वो आप कर सकते हो, मगर मैं विवश हूँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, मैं इतना ज्यादा मोहग्रस्त हो रहा हूँ। न वयम क्लेश बीजानी, बीजानी मतलब बीज पता नहीं है मुझे, ये जो दुख मुझे मिल रहा है ना आज, उसके कष्टों का मूल कारण मुझे पता नहीं है। अभी दिखने में तो साफ जाहिर था, परीक्षित महाराज को पूछने की क्या जरूरत थी कि तुम्हारे कष्टों का कारण कौन है, वो देख रहे थे ना कि एक शूद्र जो कि राजा का वस्त्र पहने हुए था और वो पाद प्रहार कर रहा था बेल के ऊपर और गाय के ऊपर, तो पूछने की जरूरत क्या थी, उसी समय उसको दंड दे देते थे। लेकिन महाराज परीक्षित चाहते थे कि जिसको कष्ट हुआ है वो अपने मुख से उस अपराधी का नाम ले, यानी एक विटनेस हो ना एक, तो उसने कहा, वो अगर कहेगा कि यही मेरे कष्ट का कारण है तो मैं उसको है ना दंड दूं, एक वो उसके मुख से सुनना चाहते थे। लेकिन ये जो धर्म रूपी, अगर हमारे जैसा कोई साधारण प्राणी होता ना, हम जैसे कोई साधारण लोग होते ना, वो यही करते हैं, सामने जो होता है, जो कष्ट पहुंचा रहा होता है, अब कष्ट क्यों पहुंचा रहा है वो कभी भी नहीं देखते, बस उसने मुझे यह तकलीफ दी, उसने मुझे यह कष्ट पहुंचाया, उसके कारण में यह दुख भोग रहा। आज हमको यदि कोई कष्ट हो रहा है तो हम पॉइंट आउट करते हैं ना कि इसके कारण मुझे, कोई किसी को पति के कारण दुख है तो किसी को पत्नी के कारण दुख है, किसी को सास के कारण दुख है तो किसी को अपनी बहू के कारण दुख है, कोई तो अपने बच्चों के कारण दुखी है तो कोई अपने माँ बाप के कारण दुखी है, तो मतलब हर कोई दुखी है। ये तो मैं अपने संबंधियों की बात कर रही हूँ, कोई टेररिस्ट के हाथों दुखी है तो कोई गवर्नमेंट के हाथों दुखी है तो कोई देवताओं के हाथों दुखी है, हर कोई दुखी तो है लेकिन उनको उस दुख की वास्तविक कारण नहीं पता। वो व्यक्ति तो वो जानते हैं जिसके कारण वो दुख आपको पहुंचा है, ये तो समझो ऐसा है जैसे आपका कोई टेलीग्राम आता है या आपका कोई मनी ऑर्डर आता है तो आपको किसी ने घर तक लाके दे दिया, ये उसकी ड्यूटी है, वो आपको घर पे बेल बजी और आप इतना ज्यादा उसको थैंक्स कर रहे हो कि आपका बहुत बहुत आभार है जो आपने मुझे इतना मनी ऑर्डर लाके दिया, मुझे वाकई में पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, उसी को आपके उसको आप थैंक्स कह रहे हो। या फिर अगर कोई लेटर लेके आया उसमें लिखा है कि किसी आपके किसी प्रिय की मृत्यु हो गई तो उसी को आप दोष देने लगे, तुमने मुझे इतना दुखी किया, तुम्हारे कारण मुझे लेकिन वो तो केवल वो मनी ऑर्डर या लेटर लेकर आने वाला था, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, आपको जो मिला है वो देने वाला तो कोई और है। इसी तरह आज जो हमें हमारे जीवन में दुख मिल रहे हैं वो दिखने में भले किसी व्यक्ति के द्वारा मिल रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति तो इन दुखों का कारण नहीं है, इसीलिए ये बता रहे हैं ये धर्म है, ये जो बोल रहे हैं वो साक्षात धर्म है और वे कह रहे हैं न वयम क्लेश बीजानि यतसु पुरुषर्षम, आप तो पुरुषों में सबसे उत्तम हो। इसीलिए मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरे कष्टों का मूल कारण कौन है, किसने मेरे साथ ऐसा किया है, कौन है जो मुझे इतना ज्यादा दुखी कर रहा है, क्योंकि पुरुषम तम ना विजान तम विजानीमो पुरुषम तम, आप स्वयं उसको जानो। पुरुषम तम विजानीमो वाक्य भेद विमोहिता, मैं तो वाक्य भेद से बहुत ज्यादा मोहग्रस्त हो गया हूँ। यानी हर एक दार्शनिक जो है वो एक अलग वजह बताता है जीव के दुख की, हर कोई अलग अलग वजह बताता है कि जीव के दुखों की क्या वजह है। जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने 6 दार्शनों को कोई नाम दिए हैं, यानी जो दार्शनिक होते हैं, जो फिलोसोफर होते हैं, उन्होंने अलग अलग कारण बताया है कि जीव के कष्टों का कौन सा कारण है। जैसे फिलोसोफर ने अपना अपना मत रखा है और यहाँ श्रील प्रभुपाद ने 6 महान दार्शनों के विषय में बताया है कि वैशेषिक दर्शन के लेखक करणाद, तर्कशास्त्र के लेखक गौतम, योग शास्त्र के लेखक पतंजलि, सांख्य दर्शन के लेखक कपिल और कर्म मीमांसा के लेखक जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के लेखक व्यासदेव, उन सब ने जीव के कष्टों का एक अलग अलग कारण बताया है। सबने अपना एक अलग अलग दर्शन दिया है, अपना एक फलसफा बताया है कि किसके कारण जीव को दुख मिल रहे हैं। तो देखने में भले उनको वो शूद्र जो है वो मार रहा था, लेकिन क्योंकि वो भगवत भक्त थे इसलिए वो किसी को भी अपने दुखों का कारण नहीं मानते हैं। क्योंकि जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि पद्म पुराण में ऐसा बताया गया है कि जीव को जितने भी दुख मिलते हैं ना, वो एक बेल है जो हमारे अपराधों की बेल है। उसमें समझो जो भी हम गलत कार्य करते हैं, हमारे सारे अपराधों की एक बेल बनी हुई है। बेल होती है ना जिसमें बहुत सारी है ना, ऐसे लंबी लंबी बनती जाती है, जो जैसे जैसे हम अपराध करते जाते हैं तो वो बेल बढ़ती जाती है। और जितने भी हमारे अपराध होते हैं ना, उनके अनुसार जो हमें कष्ट मिलते हैं तो समझो वो फल लगे हुए हैं। वो फल किस चीज के हैं, हमारे अपराधों के हैं। लेकिन जैसे जीव भक्ति करता है तो भक्ति करने से तो वो सारे अंकुर जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो फिर भी जी वक्त को यदि कोई दुख मिलता है, क्योंकि वो फिर ये ब्लेम कर सकता है ना कि भाई, मतलब ऐसा बोल सकता है ना कोई भी भक्त कि मैंने तो इतनी भक्ति की है तो फिर मेरे तो अपराधों की लिस्ट खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जब भक्त के ऊपर कभी कोई कष्ट आता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये जो दुख मुझे मिल रहा है वो किसी व्यक्ति जो दे रहा है वो उसका कारण नहीं है। और वो क्या सोचता है कि मैंने क्योंकि अपराध इससे बहुत ज्यादा किए हैं, असल में मुझे बहुत ज्यादा कष्ट मिलने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि मेरे भगवान बहुत ज्यादा कृपालु हैं इसलिए वो मेरे सारे बड़े बड़े कष्टों को तो समाप्त कर दिया, अब थोड़ी थोड़ी मात्रा में मुझे ये कष्ट पहुंचा रहे हैं, वरना मेरे क्लेश तो और भी ज्यादा होने चाहिए। तो भक्त की ये वृत्ति होती, भक्त ये सोचता है कि अगर कष्ट भी मुझे मिल रहे हैं तो ये भी मेरे भगवान की कृपा है। एक बार क्या हुआ कि ना, एक गुरु अपने शिष्यों को ऐसे बता रहा था कि जो कुछ भी आपको मिला है ना, वो समझो कि कृष्ण की कृपा है, वो सब कृष्ण की कृपा है। अगर मतलब जो भी आपको मिला उसमें आप कृष्ण की कृपा को ढूंढो, कि अगर आपको कोई दुख भी मिल रहा है ना तो भी समझो कृष्ण की कृपा है। तो लेक्चर सुनने के बाद जब सारे जो डिवोटी आए थे वो बाहर गए, तो एक डिवोटी के शूज जो है ना वो चोरी हो गए। मंदिर से बाहर जाते कभी कभी हमारे शूज भी चोरी हो जाते ना, तो उसके शूज चोरी हो गए। तो उसने कहा कि ये क्या बात हुई, इसमें मैं कहां से भगवान की कृपा ढूंढूं। अभी मेरे इतने अच्छे नए चप्पल मैंने लिए थे, वो भी मेरे चोरी हो गए। ये कोई तरीका है? लोग आते हैं मंदिर में, चप्पल भी चोरी करके जाते हैं, ऐसे से बोल रहा था। तो फिर है ना, अभी चप्पल थे ही नहीं उसके, तो इतने में गुरु महाराज भी नीचे उतरे। बोला क्या हुआ, क्यों परेशान हो? बोला आप बोलते हो ना हर चीज में भगवान की कृपा ढूंढो, अभी मैं इसमें कहां भगवान की कृपा ढूंढू कि मेरे चप्पल खो गए, मैंने इतने नए लिए थे। अभी ना वो लोग कैसे, उनके साथ जिन्होंने ऐसा किया है उन्होंने मेरे साथ तो कितना गलत किया ना। अभी मैं जाऊंगा कैसे वापस घर पे ना, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया, तो ये कष्ट मुझे उन्होंने दिया है, तो मैं इसमें कहां से भगवान की कृपा ढूंढूं। तो पता है गुरु महाराज ने क्या कहा? बोला ऐसे अपराध हो सकता है हमारे हों के जिसके कारण आज हमारे पैर कट जाने वाले हों। वो जिसने आज मेरे शूज चोरी किए हैं, हो सकता है किसी तरह से, मतलब ऐसा हमारे अपराध, जब हम भक्ति में नहीं होते हैं तो हमारे अपराध बहुत ज्यादा घिनौने होते हैं, हो सकता है हमारे पैर कटने वाले हों, लेकिन भगवान ने इतना थोड़ा कर दिया कि हमारे चप्पल चोरी करवा दिए। अब चप्पल तो आप दूसरे भी, आपके पैर तो सलामत है ना, चप्पल तो आप दूसरे भी नए जोड़े ले सकते हो, लेकिन अगर पैर कट गए होते तो मतलब आप अगर नीचे वालों को देखोगे ना जो ज्यादा दुखी हैं, उनको अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है। हम क्या करते हैं, ऊपर वालों को देखते हैं। जब हम ऊपर वालों को देखते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा ही नहीं की। अगर हम किसी बाइक पर चलने वाले होंगे, अगर बाइक पर जाएंगे और अगर गाड़ी वाले को देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा ना कि भगवान ने देखो उसको गाड़ी दी और मुझे बाइक दी है, तो हम अपने आप को सुखी नहीं समझेंगे बल्कि दुखी समझेंगे, दुख होगा हमें। लेकिन अगर हम बाइक पे जाते हुए किसी साइकिल वाले को देखेंगे तो क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा कि उससे तो भगवान ने मुझे बेहतर बनाया, वो तो साइकिल पे चल रहा है, मुझे तो भगवान ने स्कूटर दिया। और अगर साइकिल पे चढ़ के अगर आप स्कूटर वाले को देखोगे तो आपको दुख होगा, लेकिन अगर पैदल वाले को देखोगे तो आपको क्या लगेगा, शुक्र मेरे पास साइकिल तो है। लेकिन यदि आप पैदल चल रहे हो, आपके पास कोई कन्विंस नहीं है और आप किसी को देख रहे हो कि उसके पास पैर ही नहीं है, फिर तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान ने मुझे पूरा शरीर तो दिया है, भगवान ने मुझे पैर तो दिए हैं, ये तो मैं तो इसके योग्य भी नहीं हूं, मैंने तो पता नहीं कितने अपराध किए, लेकिन भगवान की कृपा है कि मेरे ऊपर इतनी कृपा की है। तो हमें हर हाल में भगवान की कृपा को ढूंढना चाहिए, भगवान की कृपा को महसूस करना चाहिए। तो यहाँ पर धर्म रूपी बेल कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं है, सब अलग अलग वजह बताते हैं हमारे दुखों की। और क्या क्या वजह बताते हैं, श्लोक नंबर 19 में बताते हैं कि चित विकल्प वसना आहुरात्मानमात्मना, कि कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं कि आत्मा ही है सब कुछ, मैं भी आत्मा हूँ आप भी आत्मा हो, तो सारे दुखों का जो उत्तरदायित्व है वो हम स्वयं होते हैं। विकल्प वसना मतलब वो सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करते हैं कि सब कुछ द्वैत जानते ही नहीं है, एक ही सब कुछ एक ही मानते हैं, एक ही आत्मा है, तो सब बोलते हैं कि हर कुछ का जिम्मेदार जो है वो मनुष्य स्वयं ही है, क्योंकि उसने ही कुछ किया है, उसी के कारण बस जो भी दुख हो रहा है, जो भी सुख हो रहा है, उसका जिम्मेदार आप स्वयं ही हो। और देवम अन्ये परे, यानी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जो दैवी शक्तियां हैं ना, जो देवता वगैरह हैं, उनके कारण हमें दुख मिलता है, उन्हीं के कारण ये सारे दुख हम तक पहुंचाए जाते हैं। और अपरे कर्म, दूसरे क्या सोचते हैं कि जो हमने कार्य किए हैं उसी के अनुसार हमें दुख या सुख मिलता है, यानी कि पिछले जन्म में जो, ये भी तो कर्म का सिद्धांत भी तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगर बुरा कर्म करेंगे तो बुरे रिजल्ट मिलेंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं कर्मों के अनुसार आपको दुख मिलता है, और कुछ लोग क्या बोलते हैं स्वभावम अपरे, कुछ ऐसे सोचते हैं कि भाई स्वभाव यानी ये जो प्रकृति है ना, उसके अतिरिक्त और भी दुख और कुछ भी नहीं है दुखों का कारण, ये प्रकृति के ही द्वारा, वो बहुत ज्यादा भौतिकतावादी होते हैं और वो मानते हैं कि प्रकृति ही इसका परम कारण है। यानी कुछ क्या सोचते हैं कि हम स्वयं आत्मा ही उसका कारण है, कुछ बोलते हैं देवता उसका कारण, कुछ बोलते हैं हमारा कर्म उसका कारण है, तो कुछ बोलते हैं प्रकृति उसका कारण है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखा जाए कि अगर हमें जो कष्ट मिलते हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिल रहे हैं,
यानी कि अगर कोई देवी देवता के द्वारा भी हमें कोई कष्ट मिल रहा है, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, या फिर कोई रोग है, या संसार में और कोई दुख हमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा मिल रहा है, तो उसका कारण भी तो हमारे कर्म है ना। क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए होंगे तो जैसा कर्म करेंगे तो हमें उसी के अनुसार हमें सुख या दुख मिलता है। तो चाहे कोई देवता भी हमें कोई कष्ट देता है तो उसका कारण तो हमारे कर्म ही है ना। क्योंकि कर्म हमने किए हैं, कर्म तो कर्ता करता है, तो कर्ता स्वयं ही अपने सुख और दुख का कारण बनता है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने जो 6.5 में बात बताई है उसमें भगवान क्या कहते हैं, उद्धरेरात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। यानी मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव आत्मा का मित्र भी है और शत्रु भी है। यानी मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष। आपने आज तक जितना भी आपको संसार में अगर बंधन प्राप्त हुआ है तो उसका कारण क्या है, मन ही। और अगर आप अपने मन को ऊपर उठाओगे और मन को इस भौतिक वस्तुओं में नहीं लगाओगे, आसक्ति और द्वंद से छुड़ाकर अगर वो भगवत चरणों में लग जाएगा तो क्या होगा, वही मन जो है वो आपके मुक्ति का कारण बनेगा। कैसे, बंधाय विषयासंगे। अगर मन जो है विषयों में बंध गया, विषयों की ओर आसक्त हो गया, तो फिर वो बंध जाएगा। और मुक्तये निर्विषय मना। और अगर हम अपने मन को इन भौतिक आसक्तियों से मतलब खींच सकते हैं तो वही मन हमारी मुक्ति का कारण बनता है। तो असल में जो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बता रहे हैं कि अतएव किसी को मन के भौतिक राग के कारण अपने आप को बंधन में नहीं डालना चाहिए। इस तरह मनुष्य का मन ही उसके सुख और दुख का कारण बनता है। यानी कि आपकी इंद्रियां आपको नहीं अटकाती हैं। आज अगर आपने पहले कोई अपराध किया है तो उस अपराध का कारण भी तो आपका मन है। भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि जीव अपराध क्यों करता है तो भगवान कहते हैं काम आयेश क्रोध आयेश रजोगुण समुद्भवा। और जब पूछा काम कहाँ रहता है तो बोला आपके मन में, आपकी इंद्रियों में। इंद्रियों में यदि काम रहता है तो वो कुछ कर नहीं सकती जब तक मन का उसको सेंशन नहीं मिल जाता। तो इसीलिए जब मन, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं आवारा हवासों में से एक जिस पर मन टिका हुआ होता है वो सारी इंद्रियों को, बुद्धियों को, अपनी बुद्धि को कंट्रोल कर देता है और वो आपसे अपराध कराता है। इसका मतलब है सारे फसाद की जड़ जो है वो हमारा मन है। इसीलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि मन तो बहुत चंचल है, फिर मैं उसको रोकूं कैसे। चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थी बलवद्रणम यस्याम निग्रह मन्य वायु रिवसु दुष्कम। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे बताया कि हाँ ठीक है, मन को रोकना कठिन तो है पर अभ्यास ही न कौनते, अभ्यास करो। यही करने के लिए भगवान ने हमें बताया कि आप अभ्यास करोगे और वैराग्य भौतिक वस्तुओं से यदि मन की आसक्ति समाप्त करोगे और आध्यात्मिकता में आने के लिए अभ्यास करोगे, भगवान की कथाओं को श्रवण करोगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करोगे तो अवश्य आपका मन कंट्रोल में हो जाएगा। यहां तक तो सही है लेकिन कारण तो फिर भी समझ में नहीं आया ना कि कारण क्या है। अभी महाराजा परीक्षित को दंड देना है तो दंड किसको देगा, क्योंकि अब हमें अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो भले ही पूर्व जन्मों में हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे लेकिन दंड तो उस अत्याचारी को ही मिलना चाहिए ना। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो फिर अत्याचारी को भी दंड क्यों मिले ना, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि हमारे कर्मों के अनुसार ही ऐसा हमें दुख मिल रहा है। तो इसलिए बेल जो है ना वो बिल्कुल घुमा फिरा के बात बता रहा है कि मुझे नहीं खबर, मैं तो खुद मोहित हो गया हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे दुख का कारण कौन है। कोई बोलता है मैं स्वयं दुख का कारण हूँ, कोई बोलता है कि प्रकृति दुख का कारण है, कोई बोलता है देव दुख का कारण है, कोई बोलता है मेरा भाग्य ही फूटा हुआ है तो इसीलिए दुख का कारण दुखी हो गया हूँ। तो यहाँ शीला प्रभुपाद जी ने अंत में बहुत ही सुंदर बात बताई है कि लास्ट पैराग्राफ में शीला प्रभुपाद जी सबका अलग अलग मत बता रहे हैं। वे कहते हैं कि नास्तिक जो भौतिकतावादी होते हैं, जो सांख्यवादी होते हैं, सांख्यवादी मतलब विश्लेषण करते हैं ना कि कौन कौन से हैं यहाँ पर तत्व जो कि ये कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति ही समस्त कारणों के कारण है। उनको ऐसा लगता है जो कुछ भी है बस ये मेटर जो है ना भौतिक प्रकृति उसी के द्वारा होता है। उनके अनुसार भौतिक तत्वों की संयोग ही भौतिक दुख सुख का कारण बनते हैं और पदार्थ का विघटन ही समस्त भौतिक तापों से मुक्त होने का कारण। बस ये भौतिक पदार्थ से दुख मिलता है और जब भौतिक पदार्थ घटने लगते हैं तो फिर दुख भी कम होने लगते हैं। बस उनकी मतलब वो आगे जाते ही नहीं है, उनको बस ये भौतिक प्रकृति ही सब कुछ दिखती है। उसके बाद गौतम तथा कणाद परमाणुओं के संयोग की ही को ही प्रत्येक वस्तु का कारण मानते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि जो परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं, उनका संयोग मिलता है, उसी से ही दुख सुख मिल रहा होता है, उनका ये फलसफा होता है। और जो अष्टाविक्र जैसे निर्विशेषवादी होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि जो ब्रह्म तेज है उन्हीं के कारण सबको सुख और दुख मिलता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं घोषित करते हैं कि वे ही ब्राह्मण्यों ही प्रतिष्ठा हम, कि ब्रह्म जो है ब्रह्म का स्रोत भी मैं खुद हूँ। तो अगर देखा जाए अतएव भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। अगर ब्रह्म भी उसका कारण है तो भी भगवान कारण बनते हैं, ठीक है। अगर देवता उसका कारण है तो देवता बनाने वाले भी भगवान है तो भी भगवान कारण है। अगर प्रकृति दुख का कारण है तो प्रकृति को बनाने वाले भी भगवान है तो भी भगवान दुख का कारण है। यानी कि भगवान, और यहां पर श्री रूपा जी ने अंतिम जो शब्द कहे वो ये कहे कि ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, कि वो परमेश्वर है और वो अनादि है और जो कुछ भी हो रहा है आज तक संसार में, जो हो रहा है, जो हुआ है, जो होने वाला, सर्व कारण कारण, हर एक वस्तु के कारण वो स्वयं है। तो फिर किसी को क्या दंड देना, क्योंकि अगर मैं स्वयं भी अपने कर्मों के अनुसार दुख भोग रहा हूं तो फिर आप किसी और को कैसे उसका अपराध का दंड दोगे। अगर मैं स्वयं नहीं, क्योंकि मैं स्वयं भी तो भगवान के कारण हूं ना, मैंने जो कार्य किए वो भी किसी न किसी तरह से भगवान ने मुझे प्रेरणा दी, तो सब कारणों के कारण तो भगवान ही है। तो फिर इसलिए मेरे दुख का कारण भी तो भगवान ही है। तो फिर मैं, मुझे खुद समझ में नहीं आता, मैं खुद बहुत ज्यादा मोहित हो गया हूँ कि मैं किसको अपने दुखों का कारण बताऊं, इसलिए मुझे खुद पता नहीं है। ऐसे अब बहुत ही सुंदर वार्तालाप होगा धर्म का और परीक्षित महाराज का। आप सब कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अत्यंत ही अनमोल और पवित्र वचनों को पढ़ सकूं, समझ सकूं और आप तक पहुंचा सकूं, अपनी सेवा और साधना अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।